السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اس سیشن میں میں آپ کو اسلام کے ایک اہم ترین رکن نماز کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی. نماز جو ہے وہ جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کے جو پانچ رکن ہیں ان میں ایمان کے بعد اہم ترین عبادت کا نام ہے. نماز اتنی جامع عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. ایٹ اے ٹائم، یعنی آپ ثنا بھی کر رہے ہیں، آپ حمد بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، قیام، رکوع اور سجدہ بھی کرتے ہیں. اور پھر نماز میں جو کلمات اور دعائیں ہیں وہ بھی اتنی جامع ہیں کہ ان میں ساری خیر جمع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ سورہ فاتحہ کو ہی لے لیں، اس میں دعا بھی ہے اور پورے قرآن کا نچوڑ ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی نماز کے فریضے کو اچھے سے سمجھیں گے اور شروع سے آخر تک اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے اور تشریح بھی. یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ اس لیے کہ جب یہ معلوم ہوگا تو ہم شوق سے نماز ادا کریں گے، نماز میں ہمارا دل لگے گا. اور چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو، تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے سے قریب ہوتا ہے فرائض ادا کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ کے اگر قریب ہونا ہے، مقربین میں شامل ہونا ہے، تو اپنے فرائض کو اچھا کرنا ہے، اور ٹاپ آف دا لسٹ نماز آتی ہے. ہم لوگ آج تک نمازیں تو پڑھتے رہے، مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو کبھی سمجھا بھی ہے، اس کی تشریح بھی سیکھی ہے؟ تو آہستہ آہستہ کر کے ہم ان دنوں میں اپنی نماز کو بہتر کرنے پہ توجہ دیں گے. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں نماز سے. نماز ہے کیا؟ نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، بات کرنا ہے. آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آسمانوں پہ جا تو نہیں سکتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، مگر اس امت کو اگر معراج چاہیے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز اللہ رب العالمین سے والہانہ محبت کا اظہار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے پانچ دفعہ دن میں فرض کی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں. ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی مشکل میں وہ ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ صبح، دوپہر، شام وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ہم کلامی کریں. خود سوچیں، رب کائنات وہ ہے کہ اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کل کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے اس کی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. تو اس کو ہماری ضرورت نہیں، جو ایک ننھا سا ذرہ جس کو انسان کہتے ہیں اس پلانٹ ارتھ پہ جو رہنے والا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لامحدود کائنات میں، اس سے وہ کہتا ہے کہ تم میرے سامنے آ کے کھڑے ہو اور مجھ سے بات کرو. سونے جانے سے پہلے بھی بات کرو، جب تم صبح کو اٹھو تو سب سے پہلے مجھ سے بات کرو، اور جب اپنے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے کرتے دن گزار رہے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیا کرو اور میرے سامنے کھڑے ہو جائے کرو اور سکون پا لیا کرو، میرے آگے جھک کے اور اپنی ساری ٹینشنز مجھے دے کے. اور جب سورج ڈھلنے لگے، دن گزر رہا ہے، اور اس احساس سے دل بیٹھنے لگے کہ سارا دن چلا گیا اور اب اندھیرا چھا رہا ہے، تو मेरी तरफ आ जाया करो, इसलिए कि मेरी जात से, मेरी याद से तुम्हें सुकून हासिल होगा। तो नमाज पूरी की पूरी देखा जाए तो मोहब्बत का इजहार है जो बंदा अपने रब से करता है। यूं लगता है एक इंसान हाथ बांधे खड़ा है, बाअदब, नजरें झुकी हुई हैं, और ऐसा लगता है जैसे कह रहा हो कि नजर भी उठाऊं तो कैसे कैसे उठाऊं तेरे आगे। सारी दुनिया मैंने पीछे कर दी अल्लाह अकबर कह के, हाथ उठाए तो जैसे सारी दुनिया पीछे फेंकती। मैंने भुला दिया हर एक को, सिर्फ एक तेरी जात है जो मेरे दिल में है, जिसकी याद है मेरे दिल में, लबों पे तेरी हम्द का तराना है, और सोचों में सिर्फ तू है। फिर जब खड़े खड़े चैन नहीं आया तो बंदा झुक जाता है उस रब के आगे और उसकी तस्बीह बयान करता है, उसकी अजमत बयान करता है। और फिर यही काफी नहीं समझता, जब ये बयान कर लेता है तो बेकरार होके खड़ा हो जाता है ये कहते हुए, सुन ली तूने मेरी सदा, तारीफ सारी तेरे लिए ही है, तूने मेरी बात सुन ली, मुझ कमजोर बेबस इंसान की बात सुन ली। और फिर खड़ा होता ही है तो बेचैन होके, बेकाबू होके उस रब के आगे गिर जाता है, अपने सारे वजूद को गिरा देता है, अपनी पेशानी उसके आगे जमीन पे रख देता है, जहां वो सबसे करीब होता है। सजदा ही वो जगह है जिसके जरिए अल्लाह ताला फरमाता है, वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और मेरे करीब हो जा, तो इंसान उसके करीब हो जाता है। तब वो ऐसे ही होता है जैसे अल्लाह ताला के कदमों में उसने अपना सर रख दिया, और वो बेइख्तियार उस रब की बड़ाइयां बयान करने लगता है, सुबहान और रब्बी अला, मेरी क्या हैसियत, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मेरी पेशानी जमीन पे पड़ी हुई है, मैं कुछ नहीं हूं और बड़ाई तो सारी तेरे लिए, मेरा वजूद, मेरी अकल, मेरा दिमाग, मेरी सोच, सब कुछ तेरे आगे झुक गई, मैं गिरी हुई हूं तेरे आगे, पस्त हूं तेरे आगे, नीची हूं तेरे आगे, हकीर हूं तेरे आगे, मेरा ये चेहरा जो इज्जत की अलामत है वो झुका हुआ है तेरे आगे, तेरे कदमों में पड़ा हुआ है, और मेरा कोई हाल नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो इससे भी ज्यादा हकीर थी, मगर इससे ज्यादा कोई और हालत नहीं जिसमें मैं गिर के अपनी हकीकत तेरे आगे रख सकूं, तो मैंने अपना सारा वजूद ही गिरा दिया, तू मुझ नातवां को देख और मुझ पे तरस खा ले। मैं तेरी बड़ाइयां बयान करने के बाद अपनी हाजतें तेरे आगे रखती हूं, अपना दुख अपना गम तुझे ही सुनाती हूं। ये करके फिर इंसान उठकर बैठ के जरा सांस लेता है, और फिर अभी दिल भरा नहीं, फिर वो झुक जाता है, फिर वो कहता है, ये मेरे आंसू मेरे दिल का हाल बयान करते हैं। फिर उसका दिल करता है कि खूब खूब उसकी बड़ाइयां बयान करे, उसकी हम्द बयान करे। जब वो ये कर लेता है तो फिर उठ के खड़ा हो जाता है, फिर उससे बातें करने लगता है, निगाहें फिर झुकी हुई, फिर आजिजी, सर नीचे। फिर उसके बाद उसी तरह झुकता है, उसी तरह गिर जाता है जमीन पे, फिर उठ के बैठ जाता है, अब बैठ के अपना हाले दिल उस रब को सुनाता है और उससे फिर मांगता है। और जब मांग चुकता है तो उसके बाद वो बंदा जो सारी दुनिया को भूला हुआ था नमाज में, अब सलाम फेरता है और सबको सलाम करके वापस इस दुनिया में आता है। वो तो कहीं और ही पहुंच चुका था, रब के आगे खड़े खड़े उसको पता ही नहीं था वो कहाँ है। उसका नाता इस दुनिया से टूट चुका था और उसका कनेक्शन कहीं और जुड़ा हुआ था। तो अब वो दुनिया में वापस आता है दाएं और बाएं सलाम करके। ये है नमाज। तो नमाज को एक्सरसाइज या मुशक्कत के तौर पर हमने नहीं लेना, अपने रब से मोहब्बत के इजहार के तौर पे लेना है। ये खड़े झुके बैठे हर वक्त मोहब्बत का इजहार। तो ये इतनी स्पेशल चीज है नमाज, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जरा परेशानी होती तो नमाज की तरफ भागते थे। क्यों? क्योंकि यही तो है जिसके जरिए मैं अपनी परेशानियां, अपना दुख, अपना गम अपने रब के आगे रख दूं, उसके आगे झुक के उससे मदद तलब कर लूं। इवन सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण भी होता था तो नमाज की तरफ बढ़ते थे। तो इट मींस नमाज वो चीज है जो स्ट्रेस में इंसान को तसल्ली देती है। तो खुद सोचिए कि हम नमाज फिर कैसी पढ़ते हैं, हमारी नमाजों में तो ये सब कुछ है ही नहीं। हालांकि अगर हम नमाज को वाकई इस तरह से पढ़ने लगे तो हम इंजॉय करेंगे नमाज, हमारा दिल लगेगा नमाज में, हमें शौक होगा नमाज का। तो जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो हमने असल में सारी दुनिया को खैर बात कह दी है। अब मेरी अल्लाह ताला से बातें करने का वक्त है, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं, ना खाना है, ना पीना है, ना बोलना है, ना सोना है, और जहन कहीं और ही लग गया। और इंसान सबसे पहले क्या कहता है, सुबहानक अल्लाहुम्मा। सुबहाना क्या माने, सुबहान का पाक है, का सुबहाना क्या है ना, पाक है तेरी जात, तेरी जात पाक है। अब पाक होने का मतलब क्या, जब आप कहते हैं ये घर पाक है, ये कालीन पाक है, अंबिया की जिंदगी पाक है, तो क्या मतलब होता है? घर पाक है यानी गंदगी से पाक है, ये कालीन पाक है यानी निजासतों से पाक है, अंबिया की जिंदगी पाक है यानी इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी गुनाहों से पाक है। तो जब हम पाक का लफ्ज बोलते हैं तो हर एक के लिए मीनिंग डिफरेंट होता है। जब हम अल्लाह ताला के लिए बोलते हैं कि अल्लाह ताला, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, सुबहाना का अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करती हूं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि किस चीज से पाक है, हर किस्म के ऐब से, हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की कमजोरी से। तो क्या क्या ऐब होते हैं, क्या क्या बुराइयां या क्या क्या कमजोरियां हो सकती हैं जिनसे हम अल्लाह ताला को पाक करार दे रहे हैं, यानी शरीकों से, मददगारों से, मुशीरों से, वजीरों से, ऐबों से, बीवी बच्चों से, वालदेन से पाक, तमाम किस्म के खानदानी रिश्तों से पाक, गफलत से पाक, नींद से पाक, ऊंग से पाक, भूल चूक से पाक, मोहताजी से पाक, आजजी से पाक, थकन से पाक, आराम करने से पाक, बुखल से पाक, और जो भी मुशरिकीन के बदअकायद हैं, जो भी वो अकीदा रखते हैं मुशरिकीन, उन सब अकायद से पाक। अल्लाह तू पाक है, तेरे अंदर कोई नक्स नहीं है, तू कोई कमी नहीं है। और जब इंसान ये कह देता है तो वो बहुत बड़ी डिक्लेरेशन करता है, इसलिए कि इसके बाद वो नफा नुकसान का मालिक किसी और को नहीं समझ सकता, क्योंकि फिर तो उसने शरीक ठहरा लिया। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि गैब की बातें कोई और जानता है, क्योंकि फिर इसने इनकार कर दिया अल्लाह के सुभान होने का। क्योंकि वो तो शरीकों से पाक है, कोई और नहीं गैब की बात जानता। फिर किसी और को वो मुश्किल कुशा नहीं बना सकता, इसलिए कि मुश्किल कुशा तो वो है, उसको तो किसी की जरूरत नहीं है, वजीरों मुशीरों की जरूरत नहीं, किसी और को अपने काम डेलीगेट करने की जरूरत नहीं कि ये काम करेगा। तो जब आप सुबहान कह देते हैं ना उसको, जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जेबा है, किसी और के लिए नहीं, ठीक है, ये लव सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जेब देता है, किसी और को नहीं, क्योंकि कोई और ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से पाक हो जैसे अल्लाह ताला है। तो फिर इसके बाद तमाम किस्म के शिर्क इंसान के खत्म हो जाते हैं खुद बखुद, और तमाम किस्म की ऐसी बातें जो अल्लाह ताला के लिए जेब नहीं देती, जो उसकी शान के लायक नहीं है, उन सब की इंसान नफी कर देता है, इनकार कर देता है। और सुबहानका का दूसरा एक और भी मफहूम किया गया है कि जहां पे मखलूक की हिम्मतें खत्म हो जाती हैं, इंसान की कुव्वत जवाब दे जाती है, इंसान थक जाता है, आजिज आ जाता है, वहां पर लफ्ज सुबहान आता है, अपनी आजजी के लिए और अल्लाह ताला की कुव्वत के लिए। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई थी और फरिश्तों से अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि तुम बताओ इन चीजों का इल्म जो आदम अलैहिस्सलाम के पास था, तो फरिश्तों ने क्या कहा था, सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें नहीं कोई इल्म। उन्होंने अपनी आजजी का इजहार किया था। इस तरह इंसान सवारी पे भी सवार होता है ना, सुबहान अल्लज़ी सखर लना कहता है, तो वो अपनी आजजी का इजहार कर रहा होता है असल में, कि अल्लाह मेरी कुव्वत नहीं है इस सवारी को चलाने की, ना ये मेरे इख्तियार के अंदर है, ठीक है, तूने ही इसको मुसख़्खर किया मेरे लिए। तो ये जो सुबहान का कलिमा है, ये बहुत बड़ा कलिमा है और ये मीज़ान में भी बहुत भारी है। तो जब इंसान सुबहान का अल्लाहुम्मा कहता है, ए अल्लाह तू सुबहान है, मैं तेरी पाकी बयान कर रहा हूं, तो वो एक बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला को कह रहा है उसकी शान में, जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाहुम्मा का माना क्या है, ए अल्लाह, और ए अल्लाह, और लेकिन मीम किस चीज की है, मीम जो है ना, ये अल्लाहुम्मा का लफ्ज हम जो है आप देख लें दुआओं में कितनी दफा हम कहते हैं, तमाम जो मसनून दुआएं अल्लाहुम्मा से ही ज्यादा स्टार्ट होती हैं। तो अल्लाहुम्मा का माना क्या है, ए अल्लाह, और मीम किस चीज की है, कि अल्लाह ताला की तमाम सिफात जमा हो गई, यानी अर रहमान अर रहीम अल वदूद अल मुजीब अल वाली अल खालिक अल बारी, जितनी सिफात हैं वो इस मीम की वजह से जमा हो गई, अल्लाहुम्मा, ठीक है, और वह भी हमदी का, और ए अल्लाह मैं तेरी हमद बयान करती हूँ, तेरी तारीफ बयान करती हूँ। और हमद का मतलब वो क्या होता है, हर किस्म की खूबी है अल्लाह तुझ में, हर किस्म का कमाल तुझ में है, सारे कमालात सारी खूबियां तुझ में जमा है या रब। तो पहले आपने नफी के कर दी हर ऐब की, और उसके बाद आपने तमाम खूबियों का मजमुआ ये बताया कि अल्लाह तेरी जात है। तो कितनी प्यारी बात आप इस वक्त बयान करते हैं जब आप ये कहते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बी हमदी का। वा का माना अगर और लें तो फिर तो अल्लाह तू पाक है, मैं तेरी पाकी बयान करती हूं, और ये भी कि तेरी हमद सारी तेरे लिए है, तारीफ सारी तेरी है। और वाओ हालिया ले सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करती हूँ इस हाल में कि जो भी कमाल की सिफात है वो तुझ में है, ये वाओ हालिया हो गया। तो वाओ हालिया का मतलब क्या हुआ, कि यानी अब ए अल्लाह तू पाक है, तेरी मैं पाकी बयान करती हूँ, और जो मैं ये तेरी पाकी बयान कर रही हूं ना अल्लाह, ये भी मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये भी तेरी तौफीक है और तेरा फजल है। अल्लाह अकबर। तो बहुत प्यारा कलिमा हम मुंह से निकालते हैं जिस वक्त हम सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का कहते हैं, और व तबारक स्मू का, और बाबरकत है तेरा नाम, तेरा नाम बड़ी बार बरकतों वाला, यानी जिस चीज पे भी तेरा नाम लिया जाए उसमें बरकत पड़ जाती है। बरकत का माना क्या होता है? बहुत ज्यादा खैर, ज्यादती खैर, ज्यादा हो जाना किसी चीज की में, बढ़ोतरी, यानी कोई भी चीज में बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है, तरक्की होती है दुनिया की किसी चीज में भी, तो अल्लाह वो तेरी तरफ से है, तेरा नाम है ऐसा कि उसकी वजह से होती है। इसीलिए हमें कहा जाता है ना, अल्लाह ताला का नाम लेके फिर कोई काम शुरू किया जाए, क्योंकि अल्लाह के नाम की भी बहुत बरकत है। अल्लाह ताला की जात तो बाबरकत है, उसका नाम भी बहुत बरकतों वाला है, उसके नाम की वजह से, उसके नाम की बरकतों से बढ़ोतरी होती है। तो इसका मतलब है कि किसी को सेहत मिलती है, या किसी को रिस्क में इजाफा होता है, या बारिशें बरसती हैं, या फसलें उगती हैं, या फूल उगते हैं, या इंसान को औलाद मिलती है, या कोई भी किसी किस्म की तरक्की मिलती है, या कारोबार में कुछ बढ़ावा होता है, तो वो कोई और नहीं कर रहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से, ना कोई पीर करता है, ना फकीर, ना कोई वली, ना कोई नबी, ना कोई जमीनी मखलूक और ना आसमानी मखलूक। हर चीज में बरकत डालने वाला सिर्फ वो अकेला अल्लाह ही है। डॉक्टर दवा दे सकता है, लेकिन शिफा डालने वाला अल्लाह है। तो ये हम सोचें कि वो रब जिसका नाम भी बड़ा बरकत है, नाम भी बरकतों वाला है, उसके नाम से चीजों में तरक्की आ रही है, बढ़ोतरी आ रही है, खैर आ रही है, और खैर बढ़ती जा रही है, सुभान अल्लाह। व ताला जद्दू का, और अल्लाह जद शान तेरी, ताला बुलंद है, अल्लाह तेरी शान बड़ी बुलंद है, तेरा मकाम बड़ा ऊंचा है। कितनी बुलंद है, कितना ऊंचा है, इसकी कोई हमें पता नहीं, हम कह नहीं सकते, हमारी अकल नहीं वहां तक पहुंच सकती। अल्लाह तू कितना बुलंद है, तेरी शान कितनी बुलंद है, तेरी शान इतनी अजीम है, तुझे ना बीवी की जरूरत, ना औलाद की जरूरत, ना कोई कोई वजीरों की जरूरत, ना मददगारों, किसी की जरूरत नहीं, तेरी शान खुद ही इतनी बुलंद है, तू इतना बुलंद शान वाला है, बरतर है तेरी बुजुर्गी, तेरी अजमत जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता। वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात इंसान कहता है, जिसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बात आपने ऐसे करके कह दी कि ला इलाहा गैरुक, नहीं कोई इलाह तेरे सिवा। ये आखिर में आप ये बात कह के बात को मुकम्मल करते हैं, क्योंकि ये है तौहीद। इलाह कोई भी नहीं है, इबादत के लायक को नहीं, क्योंकि ये सारी सिफात सिर्फ तुझ में है, सुबहान भी तू है, हम्द भी तेरी है, ऊंची शान भी तेरी है, बाबरकत नाम भी तेरा, और सारी सिफात किसी और में हो ही नहीं सकती सिवाय तेरे, तो ऐ अल्लाह इबादत के लायक भी तू ही है, सुभान अल्लाह। ना कोई पीर, ना अब्दुल कादिर जीलानी, ना अली हजवेरी, ना अब्दुल्ला शाह गाजी, कोई भी नहीं इबादत के लायक है अल्लाह, इबादत के लायक सिर्फ तेरी जात है। इतना अहम पैगाम है, इतनी अहम बात है, और अल्लाह ताला को बड़ी महबूब है कि इंसान ये बात कहे कि अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह नहीं। यही हमारा कलमा है जिससे हम नमाज शुरू करते हैं, और सारे शिर्क इससे यहीं पे खत्म हो गए, और इसके बाद कोई भी किसी को हाजत रवा नहीं समझ सकता, जो समझ के ये बातें बोले फिर उसके बाद वो कहाँ किसी और के दर पे जा सकता है कि वहां पे झुके, किसी कब्र पे जाके वहां पे सज्दे करे, वहां पे धागे लगाए, वहां पे क्या करे। जिसके पास ऐसा रब है वो उस रब को छोड़ के किधर किधर ठोकरें, किस किस दर पे जाके माथे टेकने लगा हुआ, किधर दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। वो आए ऐसे रब के पास, वो रोज नमाज पढ़ता है, नमाज से सलाम फेरते ही फिर उसके बाद कहता है फलां बाबे के पास जाना है, फलां फकीर के पास जाना है, वहां पे हाजतें पूरी होती हैं। ना ना, तुमने जिस रब की शान इतनी बयान कर दी, उसके आगे तो फिर कोई भी नहीं है, उसी को पुकारो, उसी के आगे झुको। अल्लाह अकबर। तो ये है अल्लाह ताला की सना जो हम सबसे पहले नमाज में बयान करते हैं। कितना मजा आया ना ये सीख के, समझ के। अब आज जो आपने नमाज पढ़नी है, ठहर ठहर के पढ़नी है, जो मैंने आपको बताया बहुत मुख्तसर एक तशरीह की है इसकी, लेकिन मजा आ गया इसके बाद, और आपको मजा आएगा नमाज में जब आप इस तरह से सोच सोच के पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।